हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात को वेद अपने बेडरूम में गया, वहां उसने अपने बिस्तर पर शिवांशा की साड़ी देखी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। जैसे शिवांशा को नहीं पसंद था कि कोई उसके आसपास जाकर उसे छूने की कोशिश करे, वैसे ही वेद को भी नहीं पसंद था कि कोई उसके और उसके सामान को हाथ लगाए। लेकिन हाँ, वो शिवांशा की तरह ऐसे डरकर बुरी तरह चिल्लाने नहीं लगता था, बस उसे गुस्सा आता था। वेद साड़ी लेकर शिवांशा के कमरे में गया, तब शिवांशा ने उसे बताया कि ये साड़ी उसे आराध्या ने दी थी ताकि वो कल होने वाली बरसी की पूजा में पहन सके। वेद के घर वाले शिवांशा की सच्चाई से अनजान थे, पर वेद तो सब जानता था। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि देवराज ठाकुर का अंश उसके माँ बाप की बरसी की पूजा में शामिल हो। वेद ने शिवांशा से साफ मना कर दिया था कि वो कल की पूजा में कदम भी न रखे। शिवांशा से बात करने के बाद वेद सीधा नीचे पहुंचा। उसने देखा कि लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, बस वो सब मिलकर क्रॉस चेक कर रहे थे। वेद को देखते ही नव्यांशी ने उसके पास आकर कहा, मैंने गेस्ट लिस्ट भी तैयार कर ली है। एक्चुअली भाई, हम कन्फ्यूज हैं कि दादी को कल की पूजा में बुलाएं या नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे को बुलाने की जिसे मेरे माँ बाप से नफरत हो, वेद ने सख्त आवाज में कहा। गायत्री देवी वेद से प्यार करती थी, पर दूसरा सच ये भी था कि उसने कभी अपने बेटे भरत का साथ नहीं दिया। प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा होने के बजाय भरत को जब ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली तो उन्होंने भरत का साथ देने के बजाय अपने छोटे बेटे विजय का साथ दिया था। काफ़ी बार उनकी भरत से लड़ाई भी हुई थी जिसमें उन्होंने उसे बहुत कुछ भला बुरा कहा था। नव्यांशी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। पिछले साल जब उनकी बरसी की पूजा हुई तो वेद ने गायत्री देवी को बुलाया था, लेकिन इस बार मना करने पर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। वो सबको यही समझाता था कि उनकी दादी चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो, पर वो उनकी दादी थी, उनके पापा को जन्म देने वाली। आज तो उसका तेवर ही दूसरा था। उसके गुस्से की एक वजह शिवांशा भी थी। वंश ने वेद के पास आकर गंभीर आवाज में पूछा, कुछ हुआ है क्या भाई, आप गुस्से में हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। उसे अभी इसी वक्त उन्हें ये क्लियर करना था कि शिवांशा पूजा में शामिल नहीं होने वाली है। वेद ने कुछ पल रुककर आराध्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है ना पूजा की शुरुआत किस तरह करनी है? पिछले 5 सालों से तुम ही ये करते आ रही हो। तुम लोग बाकी किसी भी काम में बेपरवाही करो, मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन इस जगह मुझे किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। हाँ भाई, मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, सबसे पहले मैं और भाभी जाकर, आराध्या उसे अपडेट दे रही थी। आराध्या की बात पूरी होने से पहले ही वेद ने उसे काटते हुए कहा, शिवांशा इस पूजा में नहीं बैठेगी, ये पूजा तुम ही करने वाली हो। वो सब वेद के इस फैसले पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने सालों इंतजार किया था कि कब वेद के पास वाली जगह भरेगी और वो अपनी पत्नी के साथ इस पूजा में शामिल होगा। लेकिन भाई, हमने सोचा आप भाभी के साथ पूजा करोगे, और हर बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर पाए क्योंकि आप सिंगल थे। अब जब भाभी आ गई है तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि पूजा में सबसे आगे मैं और आराध्या बैठें? वंश ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि वो नहीं बैठ सकती है, वेद ने जवाब दिया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। और वो क्यों नहीं बैठ सकती? नव्यांशी ने उसे घूरते हुए पूछा। उसे एक पल के लिए लगा मानो गुस्से में उनके रिश्ते की सारी सच्चाई बता देगा। उसे इसी लम्हे का इंतजार था। वेद बिल्कुल चुप हो गया था। वंश वेद के पास आकर बोला, क्या बात है भाई, आप सुबह से परेशान लग रहे हैं, क्या भाभी से आपका कोई झगड़ा हुआ जो आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ भाई, अगर कोई बात है तो प्लीज बताइए, हम सब आपके साथ हैं, आराध्या ने भी वंश की बात पर सहमति जताते हुए पूछा। वेद ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करके कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। वो एक्चुअली, बोलते हुए वेद एक पल रुका और फिर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, वो शिवांशा के पीरियड्स चल रहे हैं तो वो पूजा में नहीं बैठ सकती है। जैसे ही उन सबको कारण समझ में आया, वो सभी शांत हो गए थे। आराध्या ने मन ही मन कहा, तो क्या इसीलिए भाभी काउच पर सो रही थीं? कई बार भाई की थिंकिंग सच में पुराने जमाने जैसी हो जाती है। अब कोई भी इस मामले को लेकर वेद पर शक नहीं कर रहा था और ना ही कोई सवाल पूछ रहा था। वेद ने वहां से जाने से पहले कहा, ठीक है, अगली बार देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं और शिवांशा साथ में पूजा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आराध्या और वंश करेंगे, तभी सही रहेगा। आराध्या प्लीज सब कुछ संभाल लेना। आराध्या ने वेद की बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है भाई, फिर ऐसा कीजिए कि भाभी को डाइनिंग टेबल पर आने का बोल दीजिए, आज उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे नहीं पता था कि उन्हें पीरियड्स चल रहे हैं, वरना मैं उन्हें दर्द की कोई मेडिसिन दे देती। ऑलरेडी रैशेज होने की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं।
ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन तुम मेरा खाना मेरे रूम में भिजवा देना, मैं काफी थक गया हूँ, वेद ने जवाब दिया और वहां से जाने लगा। वेद अच्छे से जानता था कि उसके डाइनिंग टेबल पर होने पर शिवांशा कभी वहां पर नहीं आएगी, इसलिए उसने बहाना बनाया। उन सब से बात करने के बाद वेद वापस ऊपर पहुंचा। शिवांशा बालकनी में थी तो उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। वेद बालकनी के दरवाजे पर खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर कहा, नीचे जाकर डिनर कर लो और आगे से खाना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक चौहान फैमिली में हो, कहाँ ना किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दूसरा, मैंने पूजा वाला भी संभाल लिया है, बस कह देना कि। बोलते हुए वेद रुक गया था, उसे ये कहने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। शिवांशा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कहना है? यही कि तुम्हारे मेंस्ट्रुअल चल रहे हैं, वेद ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वेद जिस जनरेशन से बिलोंग करता था उसमें पीरियड जैसी चीज पर इतना खुलकर बात नहीं करते थे जितना आज की जनरेशन करती है। शिवांशा ने इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिया और हाँ में सिर हिला दिया था। ठीक है, कह दूंगी, शिवांशा ने शांत लहजे में जवाब दिया। जाकर डिनर कर लो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वेद बोला। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से जाने को हुई। उसने वेद से कहा, आप नहीं चल रहे हैं? मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैंने अपना खाना ऊपर मंगवा लिया है, वेद ने थोड़ा बेरुखी से जवाब दिया। शिवांशा, जिसे अब तक दिल ही दिल में खुशी महसूस हो रही थी कि आज वो सबके साथ में बैठकर डिनर करने वाली है, अचानक वो खुशी गायब हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि वेद इसलिए नीचे नहीं जा रहा क्योंकि शिवांशा सबके साथ डिनर करने वाली है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और यहीं पर खा लूंगी, मेरी वजह से आपको अपनी फैमिली से अलग खाना खाने की जरूरत नहीं है, शिवांशा ने नजरें झुकाकर कहा। मुझे तुमसे जानने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी बात, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती जो मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से दूर हो जाऊं। मुझे कुछ काम है, उसे भी देखना होगा, इसलिए ऊपर खाना मंगवाया है, अब जाओ नीचे, वेद ने सख्त आवाज में जवाब दिया। शिवांशा ने आगे से कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें भर आई थीं। उसने आगे कोई शिकायत नहीं की, उसे इसका हक भी नहीं था। शिवांशा धीमे कदमों से चलकर नीचे जाने लगी। शिवांशा के सामने वेद चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वेद ने उसे नीचे इसलिए भेजा था ताकि वो आराम से खाना खा सके। ऊपर जब भी उसके लिए खाना आता था तब वो ठीक से खाती नहीं थी और डाइनिंग टेबल पर उसे सबके सामने खाने में वैसे अजीब लगता था।
बेवकूफ लड़की, वेद ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपने कमरे में चला गया था। वहीं शिवांशा हिचकिचाते हुए नीचे पहुंची। पिछली बार उसने जो किया था उसके बाद से वो इतने दिनों में अब डाइनिंग टेबल पर आई थी। उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आराध्या जल्दी से उसके पास गई। आइए भाभी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा। उसने शिवांशा को अपने पास वाली चेयर पर बिठाया। नव्यांशी शिवांशा की तरफ घूर कर देख रही थी। काफी देर तक उसने कुछ नहीं कहा। शिवांशा को इतना अजीब लग रहा था कि उसने खुद की प्लेट में सर्व तक नहीं किया था। नव्यांशी उसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। आपको हमारे साथ ही खाना खाना चाहिए ताकि कम से कम आपको हमारे सामने शर्म तो ना आए, नव्यांशी ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने रानी को खाना सर्व करने का इशारा किया। वो लोग टेबल पर हल्की फुल्की बातें कर लेते थे, लेकिन आज सबने बहुत काम किया था। ऊपर से कल उनके मम्मी पापा की बरसी थी, इस वजह से उनका मूड भी अपसेट था। डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल सन्नाटा था। सबने अपना खाना खत्म किया और कमरे में जाने लगे। शिवांशा ने भी उनसे ज्यादा बात नहीं की थी। अगर किसी ने कुछ पूछा तो बस हाँ या ना में जवाब दिया था। वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। आराध्या ने उसे जो भी साड़ी दी थी वो उसने वहीं कोने में अलमारी के ऊपर रख दी थी। उन्होंने मुझे कमरे से निकाल तो दिया, लेकिन अकेले नींद भी नहीं आएगी। न जाने रोहन किस हाल में होगा, भगवान करे वो जल्द से जल्द मिल जाए। वो बस सही सलामत हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले सारे दुख सहलूंगी। वैसे भी अब लोगों की बेरुखी झेलने की आदत हो गई है, शिवांशा बिस्तर पर लेटी हुई खुद से बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में थी। रात को सोने से पहले वेद उसे चेक करने के लिए आया तो शिवांशा खुद में ही सिमट कर सो रही थी। वेद ने कमरे का टेम्परेचर बढ़ाया ताकि उसे ठंड ना लगे। उसे वहीं पर छोड़कर वेद वापस अपने कमरे में आ गया था। अगला दिन जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही गया। सारे काम विधि विधान से किए गए, पूजा, डोनेशन, सबको खाना खिलाना, हर एक काम तरीके से हो रहा था। इन सब के बीच शिवांशा ने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। हालांकि सबने उसके बारे में पूछा था, लेकिन वेद ने उसकी तबीयत खराब होने का ही बहाना बनाया। शिवांशा खुद भी इस पूजा और बाकी चीजों में शामिल नहीं होना चाहती थी, उसका किसी तरह से हक भी नहीं बनता था। और देवराज ने जिस बेरहमी से वेद के माँ बाप को मारा था उसके बाद कहीं ना कहीं उसके दिल में भी देवराज के लिए नफरत ही थी।
पूरा दिन बीत जाने के बाद जब सब अच्छे से हो गया तब रात के 12 बजे के करीब वो सब साथ में लिविंग रूम में बैठे हुए थे। सुबह वो सब इमोशनल हो रहे थे, जबकि अब उनका मूड अच्छा था क्योंकि सारा काम बिल्कुल सही तरीके से हो गया था। पिछली 2 रातों से मैं सोई नहीं हूँ, आज मैं चैन की नींद सोने वाली हूँ, नव्यांशी ने अंगड़ाई लेकर कहा। और हाँ, प्लीज़ कोई मुझे सुबह जल्दी मत उठाना भाई, एक दिन के लिए तो आप ऑफिस से मुझे फ्री कर ही सकते हैं, आज मैंने बहुत सारा काम किया था, प्लीज़, अक्षत ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। वंश ने भी अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, हाँ भाई, मेरा भी बस हो गया, कल मैं ऑफिस नहीं आने वाला हूँ। आई नो परसों संडे है, पर फिर भी मुझसे काम नहीं होगा। आराध्या मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ देख रही थी। काम तो वेद ने भी किया था, ऊपर से वो उनमें सबसे बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान का कोई नाम नहीं था। आराध्या ने प्यार से उन्हें डांटते हुए कहा, एक दिन ज्यादा काम क्या कर लिया, रात को सारे हाथ पैर पकड़कर बैठ गए, एक बार भाई की तरफ भी देख लो। नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग कल के लिए रेस्ट कर सकते हैं, वेद ने जवाब में कहा। ठीक है, तो आप भी रेस्ट कर लीजिएगा। और प्रतीक भैया कहाँ हैं? आज पूरे दिन से गायब थे, आराध्या ने पूछा। प्रतीक थोड़ी देर के लिए पूजा में आया जरूर था, लेकिन बाद में वो वेद के किसी काम से चला गया था। मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। फिर कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो, मैं देख लूंगा, वेद बोला और वहां से जाने लगा। वो सब आराम कर सकें इसलिए वेद को एक्स्ट्रा काम भी करना मंजूर था। वो लिविंग रूम से बाहर निकला ही था कि सभी अपने कमरे में जाने लगे। वैसे भी रात काफी हो गई थी। वेद प्रतीक को कॉल करने ही जा रहा था कि तभी प्रतीक का सामने से कॉल आया। वेद ने उससे नाराजगी जताते हुए कहा, आज के दिन तो तुम काम अवॉइड कर सकते थे, तुम जानते थे आज का दिन हम सब भाई बहनों को एक साथ रहना था। यकीन कीजिए भाई, मैं भी रहना चाहता था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, प्रतीक ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, भाई वो एक्चुअली मैं शिवांशा के भाई के साथ हूँ। शिवांशा के भाई का नाम सुनते ही वेद के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। वेद ने बिल्कुल धीमी सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा था ना उसे मार देना, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? मारना चाहता था भाई, लेकिन नहीं मार पाया, हालत बहुत खराब है, प्लीज इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाइए, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, मामला बहुत सीरियस है, आप आएंगे तो पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी, प्रतीक ने परेशान स्वर में कहा और एक नज़र अंदर रूम की तरफ देखा जहां डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वेद ने तुरंत जवाब दिया। रेस्ट तो उसे भी करना था, लेकिन प्रतीक ने शिवांशा के भाई को मारने के बजाय बचाने का डिसीजन क्यों लिया था ये उसे भी जानना था। एक गलती कुछ दिनों पहले वेद ने की थी तो वही गलती आज प्रतीक ने दोहराई थी। हु गेट, ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रतीक ने ये फैसला लिया होगा? क्या वेद शिवांशा को उसके भाई के मिलने का सच बताएगा? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पाठ पर मिलते हैं।